ओम शांति। हम सभी के बीच में बाबा की वो मीठी प्यारी तपस्वी बच्ची जिनका नाम सविता बहन जी है, पिछले 45 साल से आप बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई हैदराबाद में पूर्ण की और आपको ईश्वरीय जीवन की प्रेरणा प्राप्त हुई हमारे पूजनीय परम श्रद्धेया दादी जानकी जी एवं हैदराबाद में स्थित कुलदीप बहन जी की लौकिक माता जी प्रीतम बहन जी, जिनको आपने देखा और आपको ये लक्ष्य मन में आया कि जीवन बनानी है तो ऐसी जीवन बनानी है जो श्वेत वस्त्र धारिणी बहने हैं। इनका सरल स्वभाव और उच्च चरित्र देखते हुए आपने प्रेरणा प्राप्त की और कुछ समय आप हैदराबाद में रह करके सेवाएं देते रहे। आपने अपने इस ईश्वरीय जीवन को कार्यरत रखते हुए अनेकानेक सेंटर्स खोले हैं और 150 कन्याओं को आपने बाबा की सेवा में अपने जैसा बनाकर समर्पित किया है। देखिए कितनी शक्ति हम में बाबा भर देते हैं। आप समान एक को बनाना कितनी मेहनत है, पर बहन जी का सरल स्वभाव और प्रेम स्वरूप पालना, मीठी दादियों की तरह रूहानी वरदान भरी जीवन, तो उसके द्वारा इतनी कन्याएं सेवा में समर्पित हो गई है। वर्तमान समय आप वारंगल में अपनी सेवाएं दे रही है, दिन रात एक ही लगन बाबा को प्रत्यक्ष करने की रहती है। इसीलिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी आपके द्वारा आयोजित होते हैं। भटिया कराने में आप सिद्धस्त है, तेलुगु भाषा में भी आप विशेष क्लास कराते हैं। आपको तो भी धर्म में ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु आपने उस तेलुगु भाषा को ऐसा अपना लिया कि कोई न कहेगा कि बहन जी तेलुगु नहीं है। इतना अच्छी तरह से उस लैंग्वेज को अपना कर वो आप सेवाएं दे रही है। भावना का फल बाबा सदैव आपको देते रहते हैं। ऐसी मीठी प्यारी सविता बहन जी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। विषय है निश्चय में विजय।
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा पर हमें पूरा निश्चय है, तभी आप सभी इधर आए हैं ना। और बाबा ने कहा कि निश्चय भी चार प्रकार का है, चारों ही बातों में हमें संपूर्ण निश्चय चाहिए। कौन कौन सी बातें बाबा ने बताई चार बातों में? बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, और स्वयं पर, और परिवार के ऊपर। परिवार के ऊपर भी पूरा निश्चय, चारों प्रकार का निश्चय हमें पक्का चाहिए। जब चारों प्रकार का हमारा निश्चय पक्का होगा तब हमें सदा विजय मिलती रहेगी। अगर कहीं भी हमारा निश्चय कमजोर होता है तो थोड़ा निश्चय में भी कमी पड़ती है। संपूर्ण निश्चय में ही संपूर्ण विजय समाई हुई है। और सदा निश्चय बुद्धि, तभी हम विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वयं पर भी निश्चय चाहिए, जिसको हम दूसरी शब्दों में आत्मविश्वास भी कहते हैं, आत्मनिश्चय। तो ये तो हम सबको निश्चय हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी हमें पूरा मालूम पड़ गया है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। बाबा के द्वारा मुझे ये स्वमान मिला है कि आप महान आत्मा हो, साधारण नहीं हो, विशेष आत्मा हो, विशेष ब्राह्मण आत्मा हो। ये जो स्वमान हमें मिला है, बाबा के द्वारा हमें मिला है, इस स्वमान पर भी निश्चय, स्वयं पर संपूर्ण निश्चय होना जरूरी है। कभी कभी हम स्वयं का निश्चय खो लेते हैं, कभी कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम समझते हैं कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसको मैं पार कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। अगर कभी ऐसा संकल्प आता है, समझो स्वयं के लिए भी, तो क्या कहेंगे, निश्चय में हलचल है। अगर कहीं भी निश्चय में हलचल आती है तो विजय में भी हलचल होती है। इसीलिए चारों प्रकार का निश्चय, चारों ही बातों में पूरा निश्चय। हमको बाप के ऊपर पूरा निश्चय है, लेकिन स्वयं के ऊपर थोड़ा कम है, लेकिन बाबा कहते चारों ही बातों में 100% निश्चय चाहिए कि मैं कल्प पहले वाली वही आत्मा हूं। कल्प पहले बाबा ने मुझे चुना है, अभी भी मुझे चुना है विश्व कल्याण के कार्य के लिए। जबकि विश्व में इतनी आत्माएं हैं और आप देखते हो कि कितने मेधावी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्रों का ज्ञान जिनको है वो भी है, बड़े वैज्ञानिक है, बड़े धर्मात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने मुझे चुना है क्योंकि कल्प पहले मैं बाबा की बनी हूं। तो हमारा बाप के ऊपर निश्चय है और बाबा का हमारे ऊपर भी निश्चय है, तभी तो बाबा ने हम सबको अपना बनाया है। निश्चय है ना बाबा को भी कि इनके द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी और इनके द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। तो बाबा का हमारे ऊपर निश्चय है, हमारा बाप के ऊपर निश्चय है। तो हमारा हमारे ऊपर जो निश्चय है वो थोड़ा परसेंटेज है, लेकिन बाबा को हमारे ऊपर पूरा निश्चय है। हम कभी भी हलचल में आते हैं तो बाबा क्या देखता है, ये हिल हिल के पक्के हो जाएंगे, वो देखता है बाबा। वो जब हिलते हैं वो समय नहीं देखता है। हमारा जो भविष्य है, हमारा आदि जो है, आदि काल अनादि काल को देखता है बाबा। और हम कौन से काल को देखते हैं, वर्तमान को। अभी ही मेरी परिस्थिति ऐसी है, बाद में क्या होगा, क्योंकि बाबा कहते माया ऐसी ऐसी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर मेरा क्या होगा, होता है ना ये संकल्प आता है। बाबा ने क्या कहा, आपका कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आपके द्वारा ही जो विश्व परिवर्तन का कार्य है आपके द्वारा ही होना है, स्वर्ग का द्वार भी आपके द्वारा ही खुलना है। तो अभी हलचल में है, लेकिन ये फिर ठीक हो जाएंगे। ये बाबा को हमारे ऊपर निश्चय है और हम ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन जब हलचल में होते हैं तब हमको अपने ऊपर थोड़ा सा संशय आता है। बाबा पर नहीं आता है लेकिन खुद पर आता है। लेकिन हमको अपने ऊपर भी संपूर्ण निश्चय चाहिए, थोड़ा भी संशय हमको अपने में भी नहीं रखना है, तब हमारी संपूर्ण विजय हुई पड़ी है। क्योंकि बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि है उनकी निश्चित विजय है, उनकी है ही है विजय, निश्चित विजयी है वो। तो जो काम निश्चित हो जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, होते हैं ना, जब निश्चिंत होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। चिंता में रहते हैं तो सफलता में भी हमको देरी हो जाती है, सफलता में भी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, फर्क पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते निश्चित विजय है, इसीलिए आप निश्चिंत रहो। तो अपने आप में पूरा परिस्थिति में समय परिस्थिति संबंध संपर्क इस अनुसार भी हमें निश्चय चाहिए कि मैं फलाने से कैसे निभा सकूंगी, अभी ही इतना टकराव में मैं आ जाती हूँ। स्वयं में निश्चय की कमी यहाँ यहाँ हमारी आती है, जहाँ टकराव होता है वहाँ अपने आप में निश्चय हो जा कम पड़ता है कि मैं कैसे टिक सकूंगी या कैसे निभा सकूंगी। लेकिन बाबा कहते मैं क्यों सोचते हो आप, क्योंकि हमको कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है कि हम चल रहे हैं क्या? सारा कार्य हम कर रहे हैं क्या? नहीं, ये कार्य है बाबा का। इसीलिए बाबा कहते देखो स्वयं में थोड़ा सा संशय आता है तो बाबा के ऊपर भी संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते चारों ही बातों में निश्चय आवश्यक है। तो स्वयं के ऊपर भी समय संबंध संपर्क परिस्थिति सब बातें जहां भी आती है वहां स्वयं में भी निश्चय नहीं होना चाहिए, कहीं भी स्वयं में संशय नहीं आना चाहिए कि मैं चल सकूंगी या नहीं, मुझे चलना ही नहीं है। आपको किसने चलाया? ज्ञान में आप अपने आप थोड़े ही चल रहे हैं, बाबा लेके आया, बाबा चला रहा है, तो मैं अपने आप नहीं चल रही हूँ, बाबा चला रहा है। तो इसीलिए बाबा हमको चला रहा है, लेकिन उसने जो ज्ञान दिया है वो उसको अपने अंदर चलाना है तो चलना इजी हो जाएगा। तो हम क्या कह ज्ञान को अलग करते हैं और हम अलग होते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान में चलते हुए हमको इतने साल हुए हैं, ज्ञान में चलते हुए इतने साल हुए हैं, लेकिन ज्ञान को चलते हुए अंदर में कितने साल हुए हैं वो हमको गिनती करना है। सीनियरिटी वहां चाहिए। ज्ञान का चलना माना ज्ञान को मनन करना, ज्ञान के आधार पर हर परिस्थिति को पार करना, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी परिस्थिति आती है तो ज्ञान योग बाजू हो जाता है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। और जब परिस्थिति पूरी हो जाती है अरे बाबा ने ये कहा था वो कहा था वो सब याद आता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं परिस्थिति में ही हमको ज्ञान को याद करना है, मुरली का आधार लेना है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान योग के आधार से ही हमको हर परिस्थिति को पार करना है। ऐसे वैसे कैसे भी हम समाधान ले लेते हैं तो उसके रिजल्ट को मार्क्स नहीं है। जैसे एक मैथमेटिक है, गणित में आप देखिए उसका मेथड करेक्ट होना चाहिए, आंसर नहीं, मेथड भी करेक्ट होना चाहिए आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। हम क्या करते इधर से उधर से आंसर करेक्ट लाते हैं लेकिन मेथड रॉन्ग है तो मार्क नहीं मिलते। अगर आपको मेथड करेक्ट है तो उसमें आपको 75% मार्क मिलते हैं। एक मैथमेटिक ऐसा है। बाबा भी कहता है कि विजय के लिए विधि भी करेक्ट चाहिए, विधि के आधार से सिद्धि। हम इधर से उधर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसके पूरे मार्क्स नहीं है। मार्क्स तब है जब हमारा सब कुछ विधि पूर्वक हो, जैसे बाबा ने बताया उस प्रकार विधि पूर्वक अगर हमको सिद्धि मिलती है तो उसके पूरे मार्क्स है। जैसे सेवा, एक बात हम एग्जाम्पल लेंगे, एक सेवा की बात है, हम सेवा सेवा में बहुत आगे जाते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो हम खुश होते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। लेकिन हमारा जो बड़ों से कनेक्शन है, जो विधि है सेंटर की परमिशन या श्रीमत, जो हम उसको बाजू रखते हैं, सिर्फ सेवा की सफलता देखते हैं, मतलब हम आंसर ढूंढ रहे हैं करेक्ट, बस विधि हम लोग निभा नहीं रहे हैं। वो क्या हो जाता है कि वो जो सफलता मिलती है वो लंबा समय नहीं मिलती, पूरी सफलता नहीं मिलती, वो आधे में ही उसमें असफलता हो जाती, क्योंकि विधि ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग में भी पूजा की विधि में कोई कमी नहीं करते। संतोषी माता की पूजा है समझो, उसकी विधि क्या है, खट्टा नहीं खाना, ऐसा कुछ नियम है उनके। कोई भी पूजा की विधि में नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, तब उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती। अगर पूरी नहीं होती तो वो देखते हैं कि हमारी विधि में क्या कमी है, क्यों हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमारा संकल्प क्यों नहीं पूरा हुआ। तो विधि का जो महत्व है वो भक्ति मार्ग में भी बहुत है। तो हमको भी ज्ञान मार्ग में निश्चय की बातों में विधि को चेक करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप में भी निश्चय, बाबा पर भी पूरा निश्चय, कोई भी परिस्थिति में भी हमको बाबा पर भी संशय नहीं लाना है। कई बार कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है तो कहते हैं बाबा ने क्या किया, क्या मदद की बाबा ने मुझे, बोलते हैं ऐसा, बाबा लाया क्या बीमारी, बाबा लाया नहीं, वो कैसे आई, वो तो हमारे कर्म अनुसार आई, और बाबा हमको मदद नहीं दे रहा है ऐसी बात नहीं है, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं बाबा की मदद का, हम ज्यादा आशा रख रहे हैं बाबा के मदद की कि मुझे ये बीमारी ही न हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं 95% आपके हिसाब किताब में भी मदद देता हूँ, 5% आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप भी कुछ मेहनत करो उसको निकालने के लिए, और हम जो भी आया वो खाते रहे, खाने का नियम, पीने का नियम, दवाई का नियम हम नहीं निभाते हैं तो बीमारी कैसे नहीं आएगी, आएगी। तो सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं है, बीमारी भी, हमारे जो लाइफस्टाइल है, खाने का नियम है या खाने का तरीका है, खाने की चीजों में कोई फर्क है, हमको जो पसंद है वही, जब पसंद है तभी हम लोग खाते हैं तो भी तबीयत खराब हो जाती है, तब हमको डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी है। बाबा ने ये बोल दिया है, आप अपने शरीर का भी ध्यान रखो, शरीर का ज्ञान भी रखो, ध्यान भी रखो, और आत्मा का भी ध्यान रखो। ऐसे नहीं सारा समय शरीर का ही चलता रहे, 24 घंटा मैं ये खाऊं तो ठीक हो जाऊंगी, वो करूं तो ठीक हो जाऊंगी, सारा दिन सोचने की जरूरत नहीं है ना। ठीक करने के लिए हमको सोचना है, बाकी 24 घंटा शरीर के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ शरीर का ध्यान नहीं रखना है, रखना है जरूर, क्योंकि बिना शरीर के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सेवा करना है तो भी शरीर चाहिए, और याद करना है तो शरीर की जरूरत है। आप देखिए कि हम परम धाम का जो अनुभव है, आत्मा परम धाम में रहती है तब हमको अनुभव है कि हम परम धाम में बैठे हैं, शिव बाबा की बाजू में बैठे हैं, नहीं है, शरीर में है तब हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं, मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो शरीर को भूलते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए शरीर का ध्यान भी जरूरी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमको 5000 वर्ष की कमाई जमा करनी है, इसीलिए ध्यान रखना भी जरूरी है। इसीलिए बाबा पर भी हमको कभी संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा ने क्या किया, कोई संबंधी शरीर छोड़ दिया, समझो वो बीके है, बहुत सेवा करता है, बाबा उसको लेके गया, वो तो इतनी सेवा करता था, उससे भी ज्यादा सेवा के लिए ले गया बाबा। वैसे भी बाबा ने संदेशों में बताया कि किसी को ले जाता नहीं हूँ मैं, ले आने का ले जाने का जो पार्ट है वो बाबा का, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार हम आत्मा शरीर छोड़ती है और हम एक और शरीर लेते हैं। बाबा क्या करता है, हमको किसी बात में बाबा के ऊपर दोष नहीं रखना है। भक्ति मार्ग में यह हमको आदत हो गई है, जो कुछ भी आता है वो भगवान के ऊपर लगा देते हैं। अभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं, बाबा ने क्या किया, बाबा ने हमको बहुत मदद दी है। क्योंकि बड़ी बात बाबा ने कहा है छोटी हो गई है, बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ा बाबा कई बार कहते सूली से कांटा हो गया, है ना। बड़ी सजा थी वो छोटी हो गई, क्या वो सहयोग नहीं है, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के ऊपर भी आप संशय नहीं लाओ परिस्थिति में कि बाबा ने क्या किया। हम सबको ये पता है कि बाबा सृष्टि पर किस लिए आया है, उनका कार्य क्या है, हमको किन किन बातों में मदद लेनी है, कैसे मदद लेनी है, ये सब हम सबको ज्ञान है ना। बाबा ने क्या कहा कि आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं पति दुनिया को पावन बनाने आया हूँ, पतित आत्माओं को पावन बनाने आया हूँ। तो हम छोटी छोटी बातें जो यहाँ के डॉक्टर ठीक कर सकते हैं वो हम बाबा के पीछे क्यों पड़ते हैं, हर बात बाबा के ऊपर क्यों डालते हैं। वो भगवान है, वहां भी आप देखिए कि एक डॉक्टर दूसरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। ईएनटी वाला डेंटल काम करो तो नहीं करेगा ना, हमारे दांत भी ठीक करो वो कैसे करेगा, वो ईएनटी देखेगा। डेंटल डॉक्टर डेंटल चेकिंग ही करेगा, बाकी दूसरा नहीं करता है। तो फिर हम बाबा के ऊपर तो सब छोड़ देते हैं, जबकि हमको पता है बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, फिर भी वो मदद देता है। वो बोलता है लेकिन मदद देता है ना, मदद देता है, बोलता नहीं कहीं। क्योंकि हमको क्या आदत है भक्ति मार्ग में, सारा वही करे, हम अपना कुछ नहीं करे, ये हमको भक्ति मार्ग में आदत है। एक बार जगदीश भाई ने मैगजीन में दिया था, एक आदमी बहुत सुस्त आलसी एक झाड़ बेर के झाड़ के नीचे सोया पड़ा था और एक बेर उसकी पेट के ऊपर आके गिरा। एक आदमी बाजू से जा रहा था, उसने सोचा शायद इसको मदद की जरूरत है, शायद उठ नहीं सकता, ऐसा सोचा। वो नजदीक जाके पूछा भाई कुछ मदद करूं, उसने बोला कि जो मेरे पेट पर बेर है वो मेरे मुंह में डालना। मतलब हमको भक्ति मार्ग में इतना भगवान के ऊपर कुछ नहीं हमको करना है, सबको भगवान को करना है, ये आदत है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ ऐसा नहीं है, आपका खुद का पुरुषार्थ भी चाहिए, मदद। बाबा ने कहा ना हिम्मत आपकी और मदद मेरी, पुरुषार्थ हमारा सहयोग उनका कि पुरुषार्थ भी उनका। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं कि आपके तरफ से मैं ही याद करूं क्या। नहीं ना, याद तो हमको करना है। ऐसे ही हमारी शरीर की बीमारी के लिए भी हमको ही कुछ करना है, सब कुछ बाबा को बोलना नहीं है। क्योंकि बाबा किसके लिए आया है हम सबको पता है। बाकी हमारा घनिष्ठ संबंध है बाबा के साथ, बहुत क्लोज संबंध है, इसलिए हर बात बाबा को बोल सकते हैं। बाकी बाबा ने क्या किया ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बाबा हमको बहुत मदद कर रहे हैं, हम जितना सोचते उससे भी 100 गुना मदद ज्यादा कर रहे हैं, ये हम सबको अनुभव है, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या किया ऐसा कभी नहीं बोलना है, हर परिस्थिति में हमको याद रखना है हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब कुछ है। हम सभी ने 84 जन्म लिए हैं, उसमें 21 जन्म तो निर्विघ्न है, हमने कुछ गड़बड़ नहीं की। बाकी 63 जन्म तो हमारी गड़बड़ हुई है, हमारे से भी बहुत विकर्म हुए हैं। इतना हम देहाभिमान में आए, कितने विकर्म किए थे, फिर भी बाबा ने हमको अपना बनाया। फिर भी बाबा इतना ज्ञान दे रहा है जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। इतना ऊंचा ज्ञान हमको दे रहा है, सहयोग दे रहा है, माया जी बना रहा है। बाबा क्या क्या हम हमारे जीवन में क्या क्या कर रहा है, हम उसको याद करें। छोटी बड़ी बात को बाबा के ऊपर ऐसा बोलना नहीं कि बाबा ने क्या किया। बाबा सब कुछ कर रहा है, हमारी सारी जिम्मेवारी बाबा ने ले रखी है। आप दे रहे कि नहीं दे, नहीं दे रहे वो बात आपकी है, बाबा ने तो ले ली है और निभा भी रहे हैं। हमने कई बार देखा है, हमने जब बाबा को कहा कि सर्व संबंध आपके हैं, हम आपके हैं, तो बाबा ने बोला हाँ बच्चे आप मेरे हैं। तब से बाबा ने संबंध निभाना शुरू किया। हम कैसे भी हैं, क्या भी हैं, लेकिन बाबा तो अपना वायदा निभा रहे हैं। हर बात में अपना जो वायदा है वो निभा रहे हैं। बाबा ने कहा है कि साधारण मनुष्यों की तरह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य वायदे बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। निभाते हैं नहीं, परिस्थिति आती है तो छोड़ देते हैं। जब अच्छे हैं तो कहेंगे हम आपको मदद करेंगे, लेकिन जब उनको कुछ परिस्थिति आती है तो हम उनको याद ही नहीं आते। लेकिन बाबा ऐसा छोड़ता नहीं है और ऐसा छोड़ के जाने वाला भी नहीं है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि मैं ऐसा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो आप सबको साथ ले जाने वाला हूँ। वो साथ निभाता है और साथ ले जाता है, ये हम सभी का अनुभव है। इसीलिए अपने आप में भी संशय नहीं, बाबा में भी संशय नहीं, कोई भी परिस्थिति में। परिस्थितियों में बाबा की याद ज्यादा आती है, आती है कि नहीं, आती है ना। तो बाबा ने भी कहा है परिस्थिति इसीलिए आती है कि आप ज्यादा योग लगाएं। और परिस्थिति पूरी होते ही भूल जाएंगे क्या? नहीं, जब समस्या है तो बाबा बाबा, समस्या पूरी हो गई तो भी बाबा, समस्या है तो भी बाबा, सुख में भी बाबा, दुख में भी बाबा। ऐसा नहीं हम दुख में याद करें सुख में भूल जाए, नहीं, सुख में भी बाबा और दुख में भी बाबा। सुख दुख में हमें बाबा की याद सदा रहे। सुख में भी निश्चय बुद्धि, दुख में भी निश्चय बुद्धि, अनुकूल परिस्थिति में भी निश्चय, प्रतिकूल परिस्थिति में भी निश्चय। तो बाबा में हमें पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि निश्चय की परीक्षाएं बहुत है, बहुत आती है निश्चय हिलाने के लिए। लेकिन हमको क्या करना है, निश्चय को दृढ़ करना है और भी मजबूत करना है। अगर हमारा निश्चय दृढ़ होता है तो क्या कहते हैं, फेथ मूव्स माउंटेन्स। निश्चय परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी हिला देता है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा है, वो पहाड़ हिमालय जैसे पर्वत जैसे मजबूत थे बाबा। कितनी परिस्थितियां आई कि नहीं, नहीं आई। अभी जो आ रही है उससे ज्यादा या कम? ज्यादा ही आई, तो हम सबके सामने तो बहुत छोटी है। अभी आजकल हम सब के निश्चय की परीक्षा एक नई कौन सी है, टीवी में जो आ रहा है उसके बारे में भी हम सब क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये भी हमको नहीं आना है। अगर वो नहीं ही बोलेंगे तो बाबा कहता है डिस सर्विस में सर्विस समाई हुई है, हमारा बाबा निराकार है, निराकार बाबा है, निराकार बाबा ब्रह्मा में प्रवेश होके सत्य ज्ञान दिया। कोई कुछ भी बोले, टीवी में कुछ भी आए, कितने भी लोग बोले कि ये आपका है, हमारा है ही नहीं हूं, हमारा बाबा निराकार है, हमारे निश्चय पक्का हो, हिले नहीं, कोई कुछ भी बोले हमारा निश्चय पक्का है। जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे आपके लौकिक पिताजी हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं तो आपका निश्चय कम नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है। तो हमको ये भी पता है कि हमारा अलौकिक बाबा, पारलौकिक बाबा क्या है, हमको क्या मिला है, हमको क्या दे रहा है, ऐसे से कई बातें हमको डोंट केयर ही करनी है। ये निश्चय को हिलाने की परीक्षाएं हैं। बाबा ने कहा है कि दैवी परिवार को हिलाने के लिए भी बहुत परीक्षाएं आएगी। ये बाबा के महावाक्य हैं, आप सबको भी याद होंगे। लेकिन हमारा निश्चय बिल्कुल हिले नहीं, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमारा बाबा एक है, निराकार शिव बाबा और आकारी फरिश्ता बाबा, बाप दादा। बाप दादा में हमें पूरा निश्चय है। तो हम अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, बाबा के लिए कोई भी कुछ कहे तो उसमें हमको अपने निश्चय को कम नहीं करना है, उत्साह को भी कम नहीं करना है, नशे को भी कम नहीं करना है, निश्चय को भी कम नहीं करना है, सेवा को भी कम नहीं करना है। हम जैसे हैं उससे भी और ज्यादा पक्के हो जाए, और दृढ़ हो जाए, बाबा में और दृढ़ निश्चय होता जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आपको परिस्थिति नहीं आए निश्चय को हिलाने की, बातें ही नहीं आएगी, तो कैसे पता चलेगा कि आपको पूरा निश्चय है? मालूम पड़ना चाहिए ना हमारे निश्चय में कोई कमी नहीं है। तो उस निश्चय को हिलाने के लिए ये सब बातें आएगी। बाबा के सामने भी बहुत आई, और आप देखते, आपको भी ये पता है कि जहां असली चीज होती है वहां नकली चीज भी, रेडीमेड भी तैयार, बाहर का उसकी नकली चीज भी तैयार हो जाती है, डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं, हर चीज का डुप्लीकेट होता है। तो इसका भी होगा, हम डुप्लीकेट के पीछे क्यों जाएं? क्योंकि हमको असली बाबा मिला है, तो असली को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि नकली टेम्पररी है, असली परमानेंट है, अविनाशी है। इसीलिए हमारा बाबा में भी पूरा निश्चय, कब तक? लास्ट तक, संगम युग के लास्ट तक हमको हिलना नहीं है, जीवन के लास्ट क्षण तक हमको निश्चय को हिलाना नहीं है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, चाहे किसी भी प्रकार की आए, हमारे निश्चय में परसेंटेज नहीं आनी चाहिए। हमारा निश्चय पक्का हो, हमको इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। आप सबको मालूम है ना, एक दो मेंढक थे, वो उसमें से वो आगे बढ़ रहे थे, दीवार चढ़ करके, तो एक मेंढक एकदम आगे चला गया, दूसरा मेंढक नहीं रहा, वो रह गया, क्योंकि वो जो आगे चला गया वो मेंढक को सुनाई नहीं देता था, इनकी उनकी बातें नहीं सुनाई देती थी, इसलिए वो चला गया। वो क्या चर सकते हैं, उनसे क्या हो सकता है, वो मेंढक क्या वो दीवार को पार करेगा, ऐसा वैसा बोल रहे थे, तो वो मेंढक को सुनाई नहीं देता था, वो तो चला गया। ऐसे ही हमको भी व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातों को सुनना नहीं है, उन बातों को हमको डोंट केयर, डोंट वरी करना है, तब हम बहरे हो सकते हैं थोड़े समय के लिए। क्योंकि दो कान हैं हर एक को, एक कान से सुन के दूसरे कान से ऐसी बातें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाबा कहते हैं वो बातें बाहर नहीं जाने देना, वो अंदर जाएं। जो ऐसी वैसी बातें हैं जो हमारे फाउंडेशन को हिलाती हैं, ऐसी बातें एक कान से सुनिए दूसरी कान से छोड़ देना है। सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, सिर्फ बाबा की बातों को सुनना है और अंदर ले जाना है। हर बात के हमको डीपनेस में, जो बाबा कहते हैं डीपनेस में जाना है। अभी ज्ञान की बातों में भी संशय कब आता है, जब हम डीपनेस में नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही हम सुनते हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते, डीपनेस में नहीं जाते, तब वो हमारे काम में नहीं आती है। प्रैक्टिकल जीवन में जो बाबा हमको कहता है स्वरूप बनना है, हम उसका स्वरूप नहीं बनते, सिर्फ सुनते हैं, रिपीट करते हैं, वर्णन करते हैं और खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सुनने में इतनी अच्छी है, करने में कितनी अच्छी होगी, करने के बाद हम कितने अच्छे बनेंगे, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स को आप लॉकर में नहीं रखो, वो पहनो, ज्ञान के गहनों को पहनो, क्योंकि इसको कोई चोर लूटने वाला नहीं है, चोरी करने वाला नहीं है, सिर्फ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बोल करके डायरी में नोट कर लिया बस, तो कैसे हमको उसका यूज करना चाहिए, जीवन में अप्लाई करना है, तब हमको बहुत अच्छी बात को बहुत अच्छा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसे कई पॉइंट्स है, आप देखिए, हमको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वर्णन करने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाबा कहते हैं आप और डीप जाओ उसमें, और नीचे जितना गहराई में जाएंगे उतने खजाने मिलेंगे। जैसे समुन्दर के पास जाते हैं तो हमको सिर्फ ठंडक मिलती है, खजाने नहीं मिलते, क्योंकि खजाने जो है समुन्दर के बहुत अंदर जाने से मिलेंगे, ऊपर ऊपर नहीं मिलते। थोड़ा लहरों का हम आनंद ले सकते हैं, ठंडी का, ठंडक का फीलिंग ले सकते हैं, लेकिन जो खजाने चाहिए वो गहराई में हमको जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अनुभव के जो खजाने हैं वो हमको जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं उतने हम खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप ऊपर ऊपर अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ समुन्दर का स्नान हो रहा है लेकिन खजानों की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप सबको मालूम है कि समुद्र के भीतर कितने खजाने हैं, सब मालूम है, और सतयुग में कैसे सोना हीरा आएगा, वो नीचे का ऊपर आएगा। ऐसे ही ज्ञान का सागर है, शिव बाबा भी ज्ञान का सागर है, ज्ञान के हर पॉइंट में भी निश्चय, उसमें से बाबा ने लिया कि ड्रामा के पॉइंट पर निश्चय, स्वयं पर, बाप पर और ड्रामा के पॉइंट पर। ड्रामा में भी परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, होती है ना, तो ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्या निश्चय की निशानी है? अगर कोई सीन बदल गई, समझो कई बार हमको जो अच्छी सीन लगती है वही सीन स्क्रीन पर होनी चाहिए हम लोग, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही सीन स्क्रीन पर हो, चेंज होती रहती है, तो उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। निश्चय माना अगर ड्रामा के स्क्रीन पर चेंज हो गई सीन तो भी हमको अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बाबा ने कहा कि आपको कोई भी सीन देख करके संशय में नहीं आना है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा के हम करेक्शन करने वाले नहीं हैं, ड्रामा का डायरेक्टर शिव बाबा है। और शिव बाबा ने कहा कि ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, बोला ना, तो फिर डायरेक्टर को इतना पसंद है तो हमको क्यों नहीं पसंद है, हमको भी पसंद है। तो हम क्या समझते, जो अच्छा है जो अनुकूल है वही अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हर ड्रामा की सीन में लास्ट में विजय दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, तो उसमें गड़बड़ वाली सीन के बाद ही अच्छाई आती है। तो कई बार हम बहनों से, भाई बहनों से बात करते हैं तो ड्रामा कैसा है, बाबा ने कहा कि वहां ड्रामा वहां बोलो, बोला है ना बाबा ने, हर सीन को बाबा ने वहां वहां बोला है। तो फिर हम कई बार अगर कहीं भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति है तो ड्रामा ठीक नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन हम ये सोचते कि ऐसा होना चाहिए। हमेशा अगर स्क्रीन पर सतयुग ही रहे तो कैसा होगा, अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा नहीं रहता। क्योंकि शिव बाबा सृष्टि पर कब आता है, सतयुग में आता है क्या, नहीं आता ना, कब आता है, कलयुग के अंत में आता है। तो वो सबसे अच्छा सीन ये है ड्रामा में, शिव बाबा सृष्टि पर आना। तो कब आए जगह, जब दुख की आती होती तभी आता है, तो उसमें क्या हुआ, दुख भी कल्याणकारी हुआ, कलयुग भी कल्याणकारी है। तो सीन पर सतयुग भी आया, त्रेता भी आया, द्वापर भी आया और कलयुग भी आया, और शिव बाबा तभी आता है। बाबा ने कहा कि देखो सतयुग में सब अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, जन अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन बाबा है नहीं, है ना, फिर बाबा चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए संगमयुग सबसे अच्छा है, क्योंकि बाबा आता है संगम पर। सतयुग कितना भी अच्छा है लेकिन बाबा नहीं आता। तो बाबा कब आता है, जब सब बिगड़ जाता है तब आता है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता तब बाबा आता है उसको अच्छा बनाने के लिए। तभी तो बाबा की महिमा है। अगर बाबा सतयुग में आए तो क्या करेगा, बाबा ने कहा है मैं सतयुग में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आते, एक तो बोला कि मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है और दूसरा मैं क्या काम करूंगा वहां आके, क्योंकि उसका उसकी जो महिमा है, दुख हरता सुख करता पतित पावन ज्ञान का सागर सर्व के सदगति दाता, तो वहां कोई दुर्गति में है ही नहीं, तो क्या करेगा करके। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे हर युग कल्याणकारी है, वैसा ही ड्रामा के स्क्रीन में हर सीन कल्याणकारी है। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, हमेशा रात ही नहीं रहेगी। दुनिया में हर सीन बदलती है, हर चीज बदलती है, तो हर व्यक्ति भी बदलेगा। तो बाबा ने कहा ड्रामा के ऊपर भी पूरा निश्चय, ड्रामा में कैसी भी सीन हो उसको आप वहा वहा बोलो तो कल्याणकारी सीन भी कल्याणकारी में बदली हो जाएगी, वहा वहा में बदल जाएगी। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के मुख से जो भी निकलता है वैसा ही हो जाता है, इतना हम ब्राह्मणों के संकल्पों में शक्ति है। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ब्राह्मणों के अंदर इतनी शक्ति है, आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। बाबा भी वही कर रहा है अभी। सर हम सब बच्चों की विशेषताओं को तो कार्य में लगा रहा है, लेकिन हम जब बाबा के बने रहेंगे तो हमारा नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल रहा है। बाबा ने ऐसे किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहा है, हमारे अवगुणों को गुणों में बदल करके विश्व कल्याण का कार्य करा रहा है। ये हर जगह हम अपने आप को देखते हैं, सबको देखते हैं। ये जो विशाल कार्य इतना बाबा जो आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब ये नहीं सोचते कि हमारे द्वारा बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर सिर्फ निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट्स है बाबा के, कराने वाला बाबा है। देखो ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है ना। कई बार हर एक अपने जीवन में देखते हैं कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, कई परिस्थितियां भी आती रहती हैं, तो हम क्या समझते हैं कि सबसे अच्छा पीरियड ये है संगम युग का, जब हमको बाबा मिला। लेकिन ये पीरियड कब आया? जब हमारे संबंधों से हमको दुख मिला, हम कई प्रकार से नीचे गिर गए, तब हमको ये पीरियड आया, वो कल्याणकारी पीरियड बन गया ना। तो हम उसको बुरा कहेंगे या अच्छा? अच्छा ही कहेंगे। इसीलिए ड्रामा की हर सीन को देखते हुए कल्याणकारी समझ करके हम चल रहे हैं, और हमको चलना है आगे भी चल करके, ड्रामा की हर सीन को वाह वाह करते हुए चलना है। तो वो सीन वाह वाह में, हाई हाई के सीन भी वाह वाह में बदल जाएगी। देखो बाबा ने भी कहा है, ये विनाश जो है महाविनाश, उसको बाबा ने कहा कल्याणकारी है। क्यों? इसके बाद ही सतयुग आएगा, ये बिना विनाश के सतयुग नहीं आएगा, तो उसको कल्याणकारी ही कहेंगे। क्योंकि हम सब आत्माएं अपना पुराना शरीर छोड़ेगी तभी नया शरीर लेगी। ये जो पांच तत्व है वो पतित है, तमो प्रधान है, वो सतो प्रधान बनेंगे तो दुनिया भी सतो प्रधान बन जाएगी, तभी तो सतयुग आएगा। तो वो कब होगा? विनाश के बाद ही होगा, क्योंकि यही पुरानी दुनिया में देवताएं कदम नहीं रखेंगे। इसीलिए इतने बड़े महाविनाश को बाबा ने कल्याणकारी कह दिया है। और छोटी छोटी बातों को हम क्यों अकल्याण समझते हैं? इसीलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी की दृष्टि से ही देखो, हर एक आत्मा का भी इसमें अच्छा पार्ट है, हर एक आत्मा अच्छा पार्ट बजा रही है। हम करेक्शन न करें कि ये ऐसा हो तो अच्छा है, हम करेक्शन क्यों दे रहे हैं? क्या बाबा ने हमको करेक्शन करने के लिए रखा है? वो नहीं कर सकता है क्या? शिव बाबा डायरेक्टर हैं, वो हर एक एक्टर को करेक्ट कर सकता है, उसके एक्शन को करेक्ट कर सकता है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम कोई डायरेक्टर नहीं है और हम डायरेक्शन देने वाले भी नहीं है, डायरेक्शन डायरेक्टर ही देता है। हम सब आत्माएं निमित्त है, ड्रामा में हम सब पार्टधारी हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, हम आत्माएं भी कल्याणकारी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा के साथ लास्ट में ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार ही हमको 84 जन्मों में हम किसके साथ थे? ब्राह्मण परिवार के साथ। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों को इस बात में थोड़ा संशय आता है कि बाबा से तो हमारा कनेक्शन ठीक है लेकिन परिवार में खिटपिट है, इसीलिए परिवार को छोड़ते हैं, लेकिन बिना परिवार के भी हम नहीं चल सकते, संगठन हमको जरूरी है। और ब्राह्मण परिवार सबसे श्रेष्ठ परिवार है, जैसे हमको बाबा कल्प के बाद मिला है, ये ब्राह्मण परिवार भी कल्प के बाद मिला है, और यही कल्याणकारी परिवार है। 84 जन्म में यही परिवार जाएगा, लौकिक परिवार नहीं जाएगा, ब्राह्मण परिवार जाएगा। और बाबा ने यह भी कहा कि परिवार के बारे में, कैसे ब्राह्मण परिवार कल्याणकारी है, कहां कहां ब्राह्मण परिवार निमित्त बनता है धर्मराजपुरी की सजा कम करने के लिए। ये बाबा के महावाक्य हैं। ये कितना बड़ा सहयोग है, धर्मराजपुरी की सजा कम करना ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण परिवार करता है। तो इसीलिए ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय, आपस में एक दो के ऊपर भी निश्चय चाहिए। और आप देखिए कि अगर आप कभी बीमार हैं, आपके लौकिक परिवार भी आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपको इतनी खुशी नहीं होगी। वो कोई आपको शक्ति भर के नहीं जाएंगे, आपकी शक्ति लेकर के जाएंगे, आपका खर्चा होता है। कोई ब्राह्मण परिवार आता है तो वो आपको शक्ति दे के जाएगा। कोई भी भाई बहन आते तो बाबा की याद दिलाएंगे, ज्ञान की याद दिलाएंगे, वो बताएंगे कि आप निश्चिंत रहो, ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ऐसे आपकी बीमारी को कम करने में सहयोग कौन देता है? ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार नहीं देगा। वो भी और नजदीक परिवार का कोई लौकिक में होगा तो और भी दुखी होंगे, हमको भी दुखी करेंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार शिव बाबा की याद दिलाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी पूरा निश्चय हो, ये परिवार ही हमारे साथ जाएगा। और बाबा ने कहा है यही परिवार आपको एकता की प्रत्यक्षता कराएगा, एक बाप को प्रत्यक्ष करेगा। हम अकेले हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इतना बड़ा परिवार है ये परिवार, बाबा को बेहद का परिवार बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। मधुबन में आते हैं तो हमको क्यों खुशी होती है? एक तो बाबा से मिलने की खुशी और दूसरा परिवार से मिलने की खुशी। इतना बड़ा परिवार है, हमको इस बात की भी खुशी रहती है। क्योंकि आप देखिए कि यात्रा पर भी अकेले जाते हैं तो थक जाते हैं, साथ में बहुत लोग रहते तो नहीं थकते। आज बाबा की मुरली में गीत था, रात के राही थक मत जाना। तो हम थकेंगे क्योंकि ये नहीं, इतने बड़े परिवार वाले हमारे साथ हैं, एक न एक साथ देता ही है, कोई न कोई हमको सहयोग देता है। हर परिस्थिति में ब्राह्मण परिवार ही साथ देता है, पार करने में, परिस्थितियों को पार करने में, हर बात में ब्राह्मण परिवार का सहयोग, ब्राह्मण परिवार का संगठन बहुत बहुत कल्याणकारी है। परिवार के ऊपर भी पूरा हमें निश्चय हो। बाबा ने हमको परिवार का ही सिस्टम दिया है। और बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग की जो प्रथा है वो भी परिवार की है। सतयुग में हम सारा विश्व एक परिवार की तरह रहेगी, एक दूसरे से हमारा एकदम नजदीक का संबंध होगा, स्नेह का संबंध होगा, कोई संबंधों में तनाव नहीं होता। और कोई को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे माँ बाप ऐसे होते, उनके माँ बाप कितने अच्छे, हमारे माँ बाप ऐसे हैं, या हमारा ये संबंध ही अच्छा होता, तो कोई कंप्लेंट नहीं है परिवार की तरफ से या किसी भी तरीके से। बाबा ने कहा है सब अच्छे रहेंगे, तो ऐसा वातावरण हमको वहां बनाना है या यहाँ? यहाँ। अगर परिवार में निश्चय को और बढ़ाना है तो परिवार के प्रति स्नेह के स्टॉक को भी बढ़ाना है। परिवार की फीलिंग तब आती है जब आपस में स्नेह होता है, तो इसीलिए हमें स्नेह को बढ़ाना है। और बाबा ने कहा है कि माला में भी एक मन का शोभा नहीं देता, माला में पूरे मन के पिरोए रहते तब वो माला शोभा देती है। ऐसे परिवार माना एक माला, तो हम सभी उस माला के मणके हैं, बाबा के गले के हार हैं, गले का हार माना, गले को लग करके रहता है ना, तो हम बाबा से जितना स्नेह है उतना परिवार से भी स्नेह हो। कोई भी बात आती है तो हमको स्नेह कम नहीं करना है, आपस में सद्भाव कम नहीं करना है, एक दूसरे के प्रति इम्प्रेशन को खराब नहीं करना है। कोई भी इम्प्रेशन खराब करने के लिए आए तो भी हमको वो बात को अंदर नहीं जाने देना है, आपस का स्नेह, परिवार का स्नेह बना रहे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कुछ भी हम लोग अवगुण देखते हैं तो हम एक दूसरे से दूर हो जाते, हमें चारों बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी बात में थोड़ा भी निश्चय कम होता है तो विजय में कमी पड़ जाती है, इसीलिए चारों ही बातों में हमें पूरा पक्का निश्चय बुद्धि बन करके ही रहना है। और हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है, हर एक आत्मा अपना अपना बना रही है, हर एक अपना आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, वैरायटी आत्माएं हैं, इसका हमें लाभ लेना है। बाकी एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव बढ़ाते जाना है और ब्राह्मणों का किला एकदम मजबूत करना है। कोई भी ब्राह्मण इस किले से बाहर ना जाए, कोई भी प्रकार की माया इस किले को ढीला ना करे, हम सबको इस बात का ध्यान देना है। और कोई भी बातें निश्चय को हिलाने के लिए आए तो हमको हिलना नहीं है, हमको ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण निश्चय बुद्धि और पक्का रहना है। जैसे बाबा ने इतना निश्चय बाबा को शिव बाबा के ऊपर था, हम सभी ने देखा कितनी परिस्थितियों को पार कराते हुए इस यज्ञ को यहाँ तक लेकर के आए हैं बाबा और दादियाँ। यज्ञ के बड़ों के प्रति हमारी भावना कम न हो, जो भी निमित्त है उन सबके प्रति हमको बहुत रेस्पेक्ट रखना है, रिगार्ड रखना है, आपस में भी स्नेह का भाव बना करके रखना है। किसी को भी कोई भी परिस्थिति आए तो हमको मदद देना है, उनको भी खड़ा करने के लिए उमंग उत्साह किसी में कम न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हर एक में हिम्मत भरनी है, हर एक में हिम्मत को बढ़ाना है, उमंग उत्साह को बनाए रखना है। यही हम सब ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और 2018 का भी वरदान भूलना नहीं है कि बाबा ने क्या कहा, विजय ही विजय है, हम सबको विजय का वरदान मिला है, इस वरदान को सदा स्मृति में रखना है और बाबा ने कहा इसको स्वरूप में भी लाना है, तो हम वरदानी बन जाएंगे। ओम शांति।
I'm a